नमस्कार भारत, 2 मई दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर यूएन ने लगाई ग्लोबल टेररिस्ट की मोहर, पीएम मोदी बोले,
आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत जो प्रयास कर रहा था ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है।
पाकिस्तान ने कहा पहले ही लगा रखी है मसूद पर पाबंदी।
पाकिस्तान ने आज भी अपने आप को कम्प्लीटली डिसोसिएट किया है एक तरह से मौलाना मसूद अजहर से।
जानकारी लीक करने के मामले में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बर्खास्त।
टेरेसा मे ने उनको एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बोला कि वो उनको सैक कर रही है।
और खास बातचीत, लगातार विवादों में घिरी बीजेपी की भोपाल से उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर से।
मेरी जमानत कैंसिल करने के लिए उन्हें तो जानकारी का भी अभाव है कि मेरी बेल क्यों हुई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। संयुक्त राष्ट्र की ओर से पाकिस्तानी चरमपंथी और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की बड़ी सफलता बताया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपने रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को बर्खास्त कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी लीक करने के मामले में हुई है। टेरेसा मे ने कहा कि विलियमसन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्होंने ये भी कहा कि विलियमसन जाँच में सहयोग करने में भी नाकाम रहे। हालांकि विलियमसन ने जानकारी लीक करने की बात से इनकार किया है। लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता सर विंस केबल ने कहा कि इस मामले में आपराधिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा,
This is clearly a police matter. I mean, if it's been an ordinary serviceman or woman who
ये साफ तौर पर पुलिस का मामला है। अगर किसी आम अधिकारी या महिला ने ये लीक किया होता तो शायद वो अब तक पुलिस हिरासत में होता। मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस मामले में जल्दी ही शामिल होने वाली है। ये थे डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता सर विंस केबल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की न्यायिक समिति के सामने ना पेश होने का फैसला किया है। विलियम बार को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप पर विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं करने के आरोपों के चलते पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुलर रिपोर्ट के निष्कर्ष को कम करके दिखाया। 2 साल की जाँच के बाद पेश की गई मुलर की रिपोर्ट का सार अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप द्वारा नियुक्त अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने रखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को दोष मुक्त बताया गया था। हालांकि मुलर ने भी शिकायत की है कि विलियम बार ने उनकी रिपोर्ट को सही तरीके से पेश नहीं किया। सुनवाई के बाद कमेटी के सदस्य और कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सीनेटर कमला हैरिस ने कहा कि विलियम बार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा,
What was absolutely enlightening and should be deeply troubling to the entire American public.
ध्यान देने वाली और अमेरिका की पूरी जनता के लिए परेशानी वाली बात होनी चाहिए कि उन्होंने फैसला कर लिया और सबूतों को ठीक से देखा ही नहीं। कोई भी अभियोजक ऐसा नहीं करेगा कि सबूतों की समीक्षा किए बगैर फैसला कर ले कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई या नहीं। इस अटॉर्नी जनरल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ये थे डेमोक्रेटिक सीनेटर कमला हैरिस के शब्द। रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वेनेजुएला में उसकी आक्रामक कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा कि अमेरिका की वेनेजुएला नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अमेरिका समर्थित विपक्षी नेता ख्वान ग्वाइदो ने लोगों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। ग्वाइदो ने कहा कि जब तक वेनेजुएला आज़ाद नहीं हो जाता, यहाँ तब तक हर रोज प्रदर्शन होते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में जारी लड़ाई की वजह से पिछले 3 महीने में 1,40,000 लोग अपना घर छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस और सीरियाई सरकार के सुरक्षा बलों के ताज़ा हमलों की वजह से सैकड़ों लोग अब भी हमा और इदलिब में अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। रूस में मजदूर दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से कई प्रदर्शनकारी निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग की पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को बेरहमी से हिरासत में लिया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कल अपने रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को बर्खास्त कर दिया। उन पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की जानकारियां लीक करने के आरोप हैं। इन आरोपों पर विलियमसन क्या कहते हैं और अब रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी किन्हें दी गई है, ये तमाम जानकारियां हम आगे देंगे। शुरुआत में बात जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर की। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये खबर कल शाम आई और उसके बाद जयपुर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर जो कहा वो आपको सुनाते हैं।
मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। और मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी संयुक्त राष्ट्र के फैसले पर खुशी जाहिर की है। दरअसल भारत बीते करीब 10 साल से संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में मसूद अजहर का नाम शामिल कराने की कोशिश में था। इस बार प्रस्ताव अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से पेश किया गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 10 वर्षों की जद्दोजहद के बाद बुधवार को मई की पहली तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी ने पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल कर ही लिया। याद रहे पाकिस्तान के दोस्त चीन ने सन 2009 से अब तक मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शामिल करने का विरोध किया था, लेकिन बुधवार को चीन ने इस सिलसिले में अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफान दुजारिक ने सैंक्शंस कमेटी के फैसले पर इत्मीनान जताया।
It's always good when all member states of the Security Council agree on something.
ये बहुत ही अच्छी बात होती है जब सर्वसम्मति से सुरक्षा परिषद के सारे सदस्य देश फैसला लेते हैं और हमें उम्मीद है कि अब संयुक्त राष्ट्र के सारे सदस्य देश इस फैसले पर अमल भी करेंगे। सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस कमेटी ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करते हुए कहा कि वो अलकायदा के साथ जुड़ा है और आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने, धन मुहैया कराने और हमले करवाने आदि में शामिल रहा है। इसके अलावा मसूद अजहर के बारे में समिति ने कहा कि 1999 में भारत में एक इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के मामले में कैद से रिहाई के बाद उसने आतंकी गुट जैश मोहम्मद का गठन किया था और उसको धन भी मुहैया कराया था, लेकिन इस समिति ने मसूद अजहर के मामले में पुलवामा हमले का जिक्र नहीं किया है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के इससे पहले के प्रस्ताव में पुलवामा हमले का भी जिक्र था। जानकार मानते हैं कि शायद सैंक्शंस कमेटी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करवाने के लिए कुछ रद्दबदल की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से अब मसूद अजहर पर यात्रा करने और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगेगा और इसके अलावा उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने जैश मोहम्मद को अक्टूबर सन 2001 में ही आतंकी गुट की सूची में शामिल कर लिया था, लेकिन मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने के लिए भारत 2009 से कोशिश कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने मसूद अजहर को आतंकी करार दिए जाने के बाद एक वीडियो बयान में खुशी जताई और इसे भारत के लिए एक अहम कामयाबी करार दिया।
दिस इज फॉर अस ए सिग्निफिकेंट आउटकम बिकॉज वी हैव बीन एट इट।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ये एक सही कदम है। बयान में कहा गया कि भारत ने मसूद अजहर और जैश मोहम्मद की आतंकी गतिविधियों के बारे में जो जानकारियां सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस कमेटी के सदस्यों के साथ साझा की थी, ये फैसला उसी के मुताबिक लिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए इस तरह की कोशिशें जारी रखेगा जिससे आतंकी गुटों और उनके मुखियाओं को कानून के कटहरे में लाया जा सके जो भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पहले سن 2009، 2016، 2017 اور اس سال مارچ مہینے میں بھی چین نے مسعود اظہر کو آتنکی گھوشت کرنے سمبندھی پرستاووں کا ورودھ کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور کئی یورپی دیشوں کے دباؤ میں چین نے اپنا ورودھ ختم کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا رہا ہے کہ ویشوک آتنکواد سے سبھی دیشوں کو ایک ساتھ مل کر لڑنا ہوگا۔ بھارت میں فروری مہینے میں پلوامہ حملوں کی ذمہ داری بھی پاکستان استھت جیش محمد گٹ نے ہی لی تھی۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اگر چین بار بار روک نہیں لگاتا تو بھارت کی کوشش کافی پہلے ہی کامیاب ہو سکتی تھی، لیکن اس بار چین نے امریکہ، فرانس اور برٹین کے پرستاو کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ چین کے رخ میں بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ ہماری سہیوگی سندھو واسنی نے یہ سوال کیا چین کی راجدھانی بیجنگ میں موجود ورشٹھ پترکار سیبل داس گپتا سے۔
اس بار یہ ہوا کہ پلوامہ کی گھٹنا گھٹی تو کافی حساب سے بدنامی ہوئی، کیونکہ جیسے محمد نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا ہے، اس کے بعد امریکہ، فرانس اور یو کے تین لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اس پروپوزل کو لاتے ہیں بھارت کی ضرورت، کیونکہ بھارت تو ویسے بھی پرماننٹ ممبر نہیں ہے۔ اب ویسٹرن ورلڈ اگر لاتا ہے اس پروپوزل کو اور چین اگر منع کرتی ہے، چین کے لیے بہت بدنامی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ دکھائی تو یہ دے رہا ہے کہ وہ ایک ٹیررسٹ کو بچا رہے ہیں۔ تو اس بار بہت کچھ ٹٹولنے کے بعد عمران خان آئے تھے یہاں، عمران خان سے بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے یہ اسسمنٹ کیا کہ مسعود اظہر کوئی اتنا بڑا انفلوئنسل یا پاورفل ویکتی نہیں ہے پاکستان میں کہ اس کے ورودھ میں کچھ ہونے پر بہت بھیانک ری ایکشن ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری نے بھی سگنل دیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، اسے کر لیا جائے، کیونکہ وہ بھی چین کی عزت کو دیکھتے ہیں اور چین بھی پاکستان کی عزت کو دیکھتے ہیں۔
اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں دیشوں پر کیا اثر پڑے گا؟
دنیا میں آپ کو کوئی کچھ دیتا ہے اور سامنے سے کچھ لیتا نہیں، یہ تو سمبھو ہے نہیں۔ امریکہ نے بھارت کو یہ کہا کہ ایران سے آپ تیل مت لیں، چین کو بھی کہا، چین نے سنا نہیں، ایران سے بھارت نے تیل لینا بند کر دیا اور بھارت کو بہت نقصان ہوا۔ ایران کا تیل بہت سستا ہے اور دوسری جگہ سے تیل لیں گے تو بہت مہنگا ہے۔ تو اتنا بڑا سیکریفائس بھارت نے امریکہ کو کہنے پہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو یہاں سپورٹ ملے گا۔ دنیا کے آگے تو ہم یہ پیش کرتے ہیں اور ہماری میڈیا یہ پیش کرتی ہے کہ ہم سچ ہیں، اس لیے لوگ ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ڈپلومیسی تو کسی بھی ویپار کی طرح ہے، لین دین ہوتا ہے، آپ کو اس کے اگینسٹ کچھ دینا پڑے گا۔ تو آج چین نے اپنا جو مسعود اظہر کے ورودھ میں جو اپنا ٹیکنیکل ہولڈ تھا اس کو وڈرا کیا اور بھارت کی مدد کی، اور اس کے اگینسٹ میں بھارت کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، یہ سوچنا تو پھر ہم سمجھے نہیں ڈپلومیسی کو۔ دوسری بات، اب پریشر پڑے گا پاکستان پہ کہ آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں مسعود اظہر پہ۔ اگر پاکستان مسعود اظہر پہ قدم نہیں اٹھا رہی ہے تو وہ یونائیٹڈ نیشن کے کہنے کے باوجود بھی نہیں کر رہی ہے کام، تو اس کی بدنامی ہوگی اور چین کو پوچھا جائے گا آپ ایسے کنٹری کو کیوں سپورٹ کرتے ہو۔
قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ جو ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے چین، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور شاید اس لیے اس نے ایسا کیا، یہ بات آپ کو کتنی صحیح لگتی ہے؟
دیکھیے، اس میں تو کوئی دو مت نہیں ہے کہ بھارت کا مارکیٹ مل جائے تو بس چین کو تو دیوالی آ جائے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ راجنیتک طور سے کوئی سرکار اگر ون بیلٹ ون روڈ لے آتی ہے تو پولیٹیکلی اسے بہت مار کھانا پڑے گا، کم سے کم چناؤ کے درمیان تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی جی ان سے ڈرتے ہیں۔
اچانک یہ جو ویسٹ ورلڈ ہے یا ہم کہیں یو این، وہ بھارت کے پکش میں کیوں جھکتا نظر آیا؟
بھارت کے پکش میں جھکتا نظر آیا اور اس کو لے کے آج بھارت میں اسے بہت بڑا قدم مانا جاتا ہے کہ بھارت نے کیا کر دکھایا۔ ہو سکتا ہے کچھ حد تک یہ سچ بھی ہے، لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اتنی سی بات منوانے کے لیے ہم کو 9 سال لگ گئے۔ 2009 سے بات چلی تھی، 2018 ختم ہو گیا، 2019 میں ہم آئے ہیں، اس لیے ہماری طاقت کی ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو جے جے کار کریں گے، تھوڑا سا اچیومنٹ ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔
جانکاری دے رہے تھے سیبل داس گپتا۔ چین کا رخ بدلا ہے تو پاکستان بھی مسعود اظہر کو لے کر کسی طرح کی نرمی دکھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے تو مسعود اظہر پر پہلے ہی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پاکستان کی پرتکریا پر سنیے سندھو واسنی کی رپورٹ۔
سنیکت راشٹر نے پاکستانی چرمپنتھی اور جیش محمد کے مکھیا مسعود اظہر کو ویشوک آتنکوادیوں کی سوچی میں شامل کر لیا ہے۔ بھارت اپنے یہاں ہوئے کئی حملوں کے لیے مسعود اظہر کو ذمہ دار مانتا ہے، جس میں اسی سال 14 فروری کو کشمیر کے پلوامہ میں ہوا حملہ اور بھارتی سنسد پر ہوا حملہ بھی شامل ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ بھارتی نیتریتو اسے اپنی بڑی کوٹنیتک جیت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ وہیں پاکستان سرکار کا کہنا ہے کہ اسے سنیکت راشٹر کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ बीबीसी उर्दू सेवा की संवाददाता शुमाइला जाफरी कहती हैं,
ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ है और जो मसूद अजहर हैं वो उनको पाकिस्तान में पहले ही प्रोस्क्राइब्ड करार दिया जा चुका है, उनके ऊपर पहले से ही सैंक्शन और पाबंदियां थी और आज जो ये जो यूएन जो पाबंदियां नई सैंक्शन लगी हैं उसमें भी एक जो फर्द मसूद अजहर के ही एसेट फ्रीज किए गए हैं, उन्हीं पे आर्म्स एम्बार्गो लगाई गई है और ट्रैवल बैन लगाया गया है, तो पाकिस्तान को जो है वो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इसलिए पाकिस्तान को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
शुमाइला कहती हैं कि पाकिस्तान खुद को मसूद अजहर से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बार बार ये बात कह चुके हैं और ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी और पोजीशन है कि पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की और ना ही प्रोस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स की और पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है कि अब वो अपनी सॉइल को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो बज़ाहिर अभी देखा जाए तो लगता यही है अभी के हालात को देख के कि कम अज कम नियर फ्यूचर में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने आज भी अपने आप को कम्प्लीटली डिसएसोसिएट किया है एक तरह से मौलाना मसूद अजहर से और यही कहा है कि ये पाबंदियां एक ऐसे इंडिविजुअल के खिलाफ है जिस पे पहले ही पाकिस्तान में पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित किए गए किसी शख्स को सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य देश अपने यहाँ शरण नहीं दे सकता, साथ ही ऐसे व्यक्ति की आर्थिक लेन देन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि मसूद अजहर पर इन कानूनों का शिकंजा कितनी जल्दी या देर में कसेगा अभी इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सिंधु वासिनी, बीबीसी दिल्ली।
आगे बढ़ते हैं और अब बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को बर्खास्त कर दिया है। उन पर कार्रवाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की जानकारी लीक होने के मामले में की गई है। वो साल 2017 से रक्षा मंत्री थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से।
ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को कल शाम को यूके की प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे ने सैक किया, इसका ये कारण है कि लास्ट वीक 23 अप्रैल को ब्रिटेन में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हुआ। ये सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हर हफ्ते यूके में होता है और यूके की प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करती है और जो 23 अप्रैल को कुछ कॉन्फिडेंशियल इशू ये लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मीटिंग खत्म हुई और इसके बाद डेली टेलीग्राफ जो कि यूके का एक लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर है, उन्होंने अचानक एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट में उन्होंने वो सब बातें बोली जो ये 23 अप्रैल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस हुई थी। फॉर एग्जांपल यूके ये डिस्कस कर रहा था उस दिन कि ये चाइनीज टेक्निकल जो कंपनी है ना हुआवे, उसको शायद ये लिमिटेड एक्सेस देंगे ताकि वो यूके की नई 5G नेटवर्क को हेल्प करे बिल्ड करने के लिए। ये कंफर्म भी नहीं हुआ, बस डिस्कशन था जो कि एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन द फैक्ट दैट डेली टेलीग्राफ ने ये पब्लिश किया मीटिंग के बाद, इसकी वजह से टेरेसा मे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही वर्ड थी क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है और जो मिनिस्टर्स ये मीटिंग अटेंड करते हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइन करते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने ये इंक्वायरी ऑर्गेनाइज की और इंक्वायरी ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको पता चला कि रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन ने डेली टेलीग्राफ के रिपोर्टर के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, तो इस बेसिस पे उनको लगा कि शायद इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लीक किया है, तो इसकी वजह से उनको किया।
गेविन विलियमसन इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कहना है?
गेविन विलियमसन ने बोला कि वो स्ट्रॉन्गली एलिगेशन डिनाई करते हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने या उनकी किसी भी टीम मेंबर ने ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया। टेरेसा मे ने उनको एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बोला कि वो उनको सैक कर रही है, लेकिन उन्होंने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी रिजाइन करने के लिए, लेकिन गेविन विलियमसन ने बोला कि वो रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया फिर लोगों को लगेगा, उनके टीम को लगेगा कि उनका हाथ था इस लीक में।
पूरे मामले का क्या ब्रिटेन की पॉलिटिक्स पर कोई असर आप देख रहे हैं?
आपको पता है कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है और जो कंट्री है, इट्स अटर केओस में है ब्रेक्जिट को लेके। हमें ये भी नहीं पता कि अक्टूबर में हम जा रहे हैं ईयू छोड़ के या नहीं, और अब अचानक से हमारे कंट्री के रक्षा मंत्री को उन्होंने सैक कर दिया, तो इसकी वजह से जो यूके का जो लीडरशिप है वो कम्प्लीटली एक क्राइसिस सिचुएशन में आ गया है।
और अब जो नई रक्षा मंत्री आई है,
हाँ जी,
क्या है उनका प्रोफाइल, कैसे वो इस पद तक पहुंच रही हैं?
इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मिसेज मे ने इस बार ब्रिटेन को अपनी पहली रक्षा मंत्री ऑफर किया है जो कि एक फीमेल है. इनका नाम है पेनी मॉडेंट. इसके पहले वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर थी और जब डेविड कैमरन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उनके गवर्नमेंट के वक्त ये यूके की आर्म फोर्सेस मिनिस्टर रह चुकी है. अपना करियर नेवी में शुरू किया था एज अ नेवल ऑफिसर. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है.
लंदन से जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल. आज के अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है ये बताने के लिए मौजूद हैं गुरप्रीत सैनी. जी गुरप्रीत
जी, दुनिया ने अजहर मसूद को ब्लैकलिस्ट किया, ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है. चीन की दीवार टूटी, मसूद घिरा, ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है. और दैनिक जागरण की हेडलाइन है भारत की बड़ी जीत, मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित.
यानी सारे अखबारों ने इस खबर को लीड खबर बनाया हुआ है.
जी, और इसके अलावा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादी हमले में 15 कमांडो और उनके ड्राइवर की मौत, ये खबर भी लगभग सभी अखबारों में दिख रही है. इसके अलावा सीजीआई आंतरिक समिति के सामने पेश हुए, जो यौन उत्पीड़न का आरोप एक महिला ने उनको पर लगाया है. एक दिन पहले ही वो महिला अपने आप को उन्होंने आंतरिक जांच समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और उसके एक दिन बाद रंजन गोगोई इस 3 सदस्यीय समिति के सामने पेश हुए.
जी, ये दोनों खबरें, गढ़चिरौली भी और ये खबर भी कल की बड़ी खबरें थी.
बड़ी खबरें थी. और 6 सितंबर को चांद पर जा सकता है भारत, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर दिख रही है. इसरो ने बुधवार को कहा कि वो भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है. उसके मुताबिक ये लॉन्च 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच हो सकता है और 6 सितंबर 2019 तक चांद पर पहुँच सकता है.
जी,
इसके अलावा बीजेपी विधायक खरीदने की कोशिश में सिसोदिया, ये जनसत्ता अखबार की हेडलाइन है. उप मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर कि 10-10 करोड़ में आम आदमी पार्टी के 7 विधायक खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बीजेपी ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है. और हिंदुस्तान टाइम्स में एक तस्वीर दिख रही है जो तूफान से पहले की खामोशी दिखा रही है. ऊपर काले बादल हैं और नीचे समुद्र, ये
ओडिशा की तस्वीर है.
एक फेनी तूफान वहाँ पे आने वाला है जिसे देखते हुए ओडिशा में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और जो निचले इलाके हैं वहाँ के लोगों को निकालने के आदेश दे दिए गए हैं.
टूरिस्ट को भी अलर्ट किया गया है, उनसे कहा गया है कि वो समुद्री तट से दूर रहें या पूरी छोड़ दें. जी
जी, और इसके अलावा येती नहीं भालू के पैर के निशान, ये कहा है नेपाल ने. भारतीय सेना ने जो दावा किया था कि उन्होंने
येती के पैर देखे हैं
उसको खारिज किया है नेपाल ने और कहा है कि वो येती के नहीं बल्कि भालू के पैर हैं.
जी, बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सैनी अखबारों की समीक्षा के लिए. और अब बात प्रज्ञा ठाकुर की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से उम्मीदवार बनाया है. वो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को चुनौती दे रही हैं. प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाकों की अभियुक्त हैं और उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरती रही हैं. बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने प्रज्ञा ठाकुर से तमाम मुद्दों पर बात की और सबसे पहले पूछा कि उन्होंने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया.
भोपाल में जिस प्रकार से प्रत्याशी हमारी विरोधी पार्टी का खड़ा हुआ है, जैसे ही उसका नाम घोषित हुआ, मुझे लगता है कि मीडिया ने ही निर्णय कर दिया था कि साध्वी जी को लड़ना चाहिए, क्योंकि मीडिया सीधे मेरे पास आई और शायद घोषणा भी नहीं हुई थी, सिर्फ ये था कि नाम घोषित होने वाला है सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी का. तभी मीडिया ने प्रारंभ कर दिया, आप लड़ेंगे क्या? तो वो व्यक्ति जो खड़ा है उसके समक्ष मुझे जनता ने अपने आप चुना.
लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि आपके खिलाफ जो पहली पुलिस कार्रवाई हुई थी वो शिवराज सिंह चौहान के सरकार में हुई थी, न कि कांग्रेस सरकार में, तो उसके बारे में क्या?
मुझे लगता है आपकी जानकारी गलत है. शिवराज जी ने नहीं की थी, ये महाराष्ट्र पुलिस ने की थी, मुंबई ATS ने, क्योंकि हमारे ऊपर कोई प्रकरण ऐसा नहीं था.
सुनील जोशी वाला जो प्रकरण
लगाया गया है और ये कांग्रेस ने ही लगवाया है और जहाँ कानून का प्रश्न आता, और वो भी 2011 में लगवाया है. घटना कब की है? 2007 की. और 2011 में मैं जेल में थी और जेल में इसलिए थी क्योंकि महाराष्ट्र ATS ने मुझे अरेस्ट किया था और इस कारण से मैं जेल में थी. और वहाँ 7 से लेके 11 गैप काफ़ी लंबा रहा और उस समय उनकी डिमांड पर, केंद्र सरकार के कारण ये जो तथाकथित सरकार थी उस समय की, यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार, और ये केस लगवाए, तो शिवराज जी का ये स्वभाव है कि वो कभी भी कानून के आड़े नहीं आते हैं।
लेकिन एक बात ये भी तो सच है साध्वी प्रज्ञा जी कि दिग्विजय सिंह उस समय किसी भी पोस्ट पर नहीं थे, मतलब ठीक है चिदम्बरम थी या मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक मिलीजुली सरकार थी, बट दिग्विजय सिंह कोई पद नहीं उस समय उनके पास था।
पद हो ना हो, लेकिन ऐसे लोग बड़ी अपनी प्रमुख भूमिका में रहते हैं और ये पूरा कुचक्र चलने वाले लोगों का एक कुकस था।
ये बताइए कि उमा भारती जी से मिलने के वक्त आप बहुत ही इमोशनल हो गई, भावुक हो गई, कोई ख़ास वजह उसकी?
वो साध्वी हैं, हम भी साध्वी हैं, हम लोग सन्यासी हैं, और हम जब आपस में मिलते हैं तो वो हमारा बहुत सम्मान करती हैं और वो कहती हैं कि आप तो दुर्गा हो, आपने इतना सहन किया, हम सहन नहीं कर सकते थे। वो तो कुछ भी भावुक हैं, वो भी शब्दों में ध्यान नहीं देती लेकिन बोल देती हैं, और मुझे बड़ा अजीब लगता है जब वो मेरे पैर छूती हैं, किंतु वो मुझसे बड़ी हैं उम्र में भी और संन्यास में भी।
ये बात बताइए कि आपका स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया और यही बेल की एक वजह थी आपको जो ज़मानत दी कोर्ट ने, लेकिन आप पहले से तो बेहतर हैं, अभी चुनाव प्रचार कर पा रही हैं, तो किस तरह का इलाज करवाया, क्योंकि ये दूसरों के भी काम आ सकता है, किस तरह का इलाज करवाया, किन लोगों से आपको फ़ायदा हुआ?
तमाम ट्रीटमेंट लिया मैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और गौमूत्र, पंचगव्य से बनी औषधियाँ, विभिन्न वनस्पतियों के काढ़े, इन सब का मैं उपयोग करके अपने को स्वस्थ रखने का आज भी प्रयास करती
हूँ। कुछ लोग ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आप इतने स्वस्थ हो गए हैं तो आपको बेल जो है आपका ख़त्म किया जाना चाहिए, बहुत जगह तो ये भी सवाल उठ रहा है।
देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, उनको समर्थन करने वाले लोग और देश विरोधी लोग, धर्म विरोधी लोग, षड्यंत्रकारी लोग, जिन्होंने मुझे षड्यंत्र करके जेल में डाला, वो लोग तो ये चाहेंगे ही कि इनको फिर से अंदर डाल दो जेल में, और मेरी जमानत कैंसिल करने के लिए उन्हें तो जानकारी का भी अभाव है कि मेरी बेल क्यों हुई, ये खुद ही खोजें और खुद ही जवाब देंगे वो।
साध्वी प्रज्ञा जी, आपने एक बयान दिया कि मुसलमान भी हमारे भाई हैं, आपका एक बयान मैंने पढ़ा, कि आपने ये बयान दिया और उसके पीछे मतलब क्या क्या संदेश, क्या मैसेज है?
मैं एक ही बात कहती हूँ, देश को तोड़ने वाले लोग, इनको कभी हम सफल नहीं होने देंगे, और जो देश के प्रति निष्ठा नहीं बताते हैं वो देश विरोधी हुए, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया।
ये थी बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अपनी टीम के लिए कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो पिछले मैच में बुखार होने के कारण नहीं खेले थे तो चेन्नई को मुंबई इंडियंस के हाथों 46 रन से हार का सामना करना पड़ा था, और जब कल धोनी ठीक होकर वापस लौटे तो टीम ने भी जीत की राह पकड़ ली। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ही घर में खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 80 रन से हराकर क्रिकेट का पाठ पढ़ाया। दिल्ली के सामने जीत के लिए 180 रनों जैसा लक्ष्य था, लेकिन वो 16.2 ओवर में ही महज 99 रन पर सिमट गई। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 44 और शिखर धवन ने 19 रन बनाए। बाकी किसी बल्लेबाज की इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा की घूमती गेंदों के सामने विकेट पर टिकने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि श्रेयस अय्यर और शिखर धवन के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई तक भी नहीं पहुंचा। इमरान ताहिर ने 12 रन देकर 4 और रविंद्र जडेजा ने 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर चेन्नई ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद 44, सुरेश रैना के 59 और फैब डु प्लेसी के 39 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 179 रन बनाए। धोनी ने 44 रन 22 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए। अब चेन्नई के 13 मैचों के बाद 9 जीत के साथ 18 अंक हैं और वो अंक तालिका में पहले पायदान पर है।
और चलते चलते मुख्य समाचार गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की ओर से पाकिस्तानी चरमपंथी और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों का धन्यवाद किया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपने रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को बर्खास्त कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी लीक करने के मामले में हुई है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की न्यायिक समिति के सामने पेश होने का फैसला इनकार कर दिया है। विलियम बार को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप पर विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं करने के आरोप के चलते पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।